Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो शिक्षा के निमित्त माध्यम है, उन्होंने हमें यह सिखाया कि बच्चे केवल ऐसा नहीं, तुम अपनी ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का साधन करो। ये तो स्वार्थ एक और प्रकार का स्वार्थ हो गया। जैसे संसार में अनेक प्रकार के स्वार्थ हैं, ये एक आध्यात्मिक स्वार्थ हो गया। चलो अच्छे ग्रेड का स्वार्थ सही, उनसे समझो रॉयल क्वालिटी का एक स्वार्थ सही। सब लोग दुख और अशांति से मुक्त हों, माना ये संसार ही दुखमय न रहे, ये संसार ही सुखमय बन जाए, शांतिमय बन जाए, ऐसी सेवा करो। केवल अपने लिए ही सुखी संसार मत बनाओ। आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, एक बिल्डिंग बना ली, कार भी रख ली, चार पांच नौकर भी रख लिए, और अपना साधन जुटा के आप जहां जाते हैं लोग सलाम टेकते हैं और आपको जगह जगह बुला के फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, आप संतुष्ट हैं, बहुत खुश हो गए, जीवन हमारा सफल हो गया। बट दैट इज नॉट एनफ। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल यू हैव मेड हैप्पी इन योर लाइफ। कितने रोतों के आंसू आपने पूछे हैं, कितने लोगों को सुख दिया है, कितने लोगों को शांति आपने जीवन में दी है। आपके जीवन की सफलता इसी में है। किसी ने कहा है कि कोई जो मनुष्य का जीवन है, वो कहते हैं जी वो फलां व्यक्ति जो है 80 साल की उम्र में उसने शरीर छोड़ा, काफी बड़ी आयु प्राप्त की। और आपको मालूम है जब बहुत बड़ी आयु के लोग होकर मिलते हैं, मरते हैं लोग, तो उनका जो अर्थी निकाली जाती है वो विशेष सजी हुई होती है, बुजुर्गों की जो काफी उम्र तक जी लें, दादा या दादा के भी पिता महा, जो उनकी अर्थी निकलती है वो सारी धज के निकलती है। पैसे भी लोग वो पुरानी प्रथा है डालते हैं, बाजे बजते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं। बच्चे लोग तो समझते हैं आज उत्सव है, उनको क्या मालूम कि परदादा जी जो हैं वो प्राण त्याग गए, तो वो अपना खुश होते हैं कि आज लड्डू खाने को मिले। तो ऐसा होता है, तो वो भाई काफी आयु जी, लेकिन सवाल ये नहीं कोई पूछता कि वो अपने लिए जिया या किसी और को भी सुख दिया। संसार में जीना उसका अच्छा है जो केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। हमने संसार में अपना तन मन धन स्वयं ही सारा अपना खत्म कर दिया, तो या दूसरों को भी उससे कुछ लाभ दिया, ये एक सोचने की बात है। तो किसी व्यक्ति ने कहा है आवर लाइफ शुड बी मेजर्ड नॉट इन ईयर्स बट इन ग्रेट एक्ट्स। हमने जीवन में महान कार्य क्या किए उससे हमारे जीवन को मापा जाना चाहिए। किसी ने 50 काम किए, किसी ने 100 काम किए, उसकी आयु उतनी ही बड़ी है। वरना कर्म तो हम कर ही रहे हैं। अगर हम कर्म मोह से, क्रोध से, लोभ से, इस तरह से काम कर रहे हैं, विकारों के वशीभूत हुए हुए, फिर तो और ही अपना आगे के लिए नुकसान कर रहे हैं। कर्म के बिना तो कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। गीता में ये कहा गया है कि हे वत्स, हर एक व्यक्ति जो इस कर्म क्षेत्र पर आया है, जिसने ये कर्मेंद्रियों का शरीर लिया है, कर्म तो हर एक को करने पड़ते हैं, बिना कर्म किए कोई नहीं रहता। खाना खाना ये भी एक कर्म है, इस तरह से मन से कुछ सोचना ये एक मानसिक कर्म है। मन वचन कर्म से कर्म के कई प्रकार हो सकते हैं। कर्म तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन यहां तक भगवान ने कह दिया कि कर्म करने तो मुझे भी संसार में आना पड़ता है, ताकि अगर मैं ना हूं तो इस संसार में अव्यवस्था आ जाती है और लोग धर्म से हटकर अधर्म में पड़ जाते हैं, पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है संसार में। कर्म मैं भी करता हूं, लेकिन जो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसको नहीं जान के कर्म करता रहता है तो पाप का भागी बनता है। तो कर्म तो हम करते हैं, लेकिन उसमें से कितने कार्य हमारे कर्म हैं जो हम सेवा के लिए करते हैं, या जो हमारे सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, सतोगुणी कर्म है, महान कर्म है, जो हम कहें जिसके लिए, जैसे वो कबीर कहता है मेरी चुनरी में लागा दाग, पिया के घर जाऊं कैसे। तो ये तो सारा मेरा, जैसे सजनी जाती है साजन के पास, शीशे के सामने खड़ी होगी, सुरमा पहनेगी, पाउडर लगाएगी, कंघी देगी, तैयार करेगी, साजन के पास जाना है। एक जाता है व्यक्ति इंटरव्यू पर, तो कहता है पर्सनैलिटी भी देखेंगे मेरी, सिर्फ मेरी जनरल नॉलेज नहीं देखेंगे। बार बार कंघी करेगा, बाल ये इधर से उधर बिखरा हुआ है, तो फिर थोड़ा उसको पानी लगा के सेट करेगा, इट शुड बी ऑल राइट। देखेगा नेकटाई ठीक जगह पर है कि नहीं है, यहाँ जेब में रुमाल ठीक रखा है कि नहीं, पेन ठीक जगह पर लगा हुआ कि नहीं लगा, कि पर्सनैलिटी को भी लोग देखेंगे। तो वो हर एक व्यक्ति ये देखने की कोशिश करता है कि मेरा जो व्यक्तित्व हो वो ठीक प्रकार का एक व्यक्तित्व हो। लेकिन ये तो एक हमारा बाह्य अपना मूल्यांकन है, बाह्य व्यक्तित्व है। हमारा मन, हमारे कर्म जो पर्सनैलिटी विशेष है, वास्तविक है, वो हमारी कहाँ तक ठीक है, इसको हमने अपने जीवन में इसका मूल्यांकन किया या नहीं किया, इस तरफ हमने ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो आप ये देखेंगे कि ऐसी सेवा की आप संसार में जरूरत है जिससे कि संसार में शांति हो, सुख हो, ये समस्याएं समाप्त हो। अब अनेक प्रकार के, मैंने जैसे आपको बताया, सेवा संस्थाएं हैं, अनेक प्रकार के कार्य भी होते रहते हैं, लेकिन वो समस्याएं तो बढ़ती रहती हैं। उसके लिए जरूरत किस बात की है? अगर आप विश्लेषण करें, ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि सभी समस्याओं का मूल एक ही है, और जब तक आप उस मूल को नहीं समाप्त करेंगे, उसके काज को, उसके, किसी ने कहा ना भाई, बिना कारण जाने उसका निवारण नहीं हो सकता। जब तक बीमारी जानी नहीं, उसकी दवाई कैसे देंगे? और दवाइयां देते रहेंगे तो उसकी और भी रिएक्शन हो जाएंगे। तो हमें तो जरूरत है कि उसके मूल कारण को जाने। अब मान लो लड़ाई है, एटम और हाइड्रोजन बम बना रहे, रूस वाले भी, अमेरिका वाले भी, चाइना वाले भी, फ्रांस वाले भी, इंग्लैंड वाले भी, उसको न्यूक्लियर क्लब कहते हैं कि भाई कुछ देश ऐसे हैं जो कि एटम और हाइड्रोजन बम बनाते हैं, उनके पास ये विज्ञान, ये कला आ गई है कि इस प्रकार के विस्फोटक शस्त्र बनाएं जिससे काफी बड़ा विध्वंस हो। अब लोग चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाए, चलो वो समाप्त भी कर दें, जैसे थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं, लेकिन करने के बाद सोचने की जरूरत यह है कि उन्होंने बनाए क्यों थे, उसके बनाने में उनका मूल भाव क्या था। एक तो उनको डर था कि फलां देश हम पर अगर आक्रमण कर देगा हम गुलाम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ उसका एक मूल तो भय था। दूसरा क्या था, आपस में ईर्ष्या या घृणा थी, वो समझते थे ये बड़े शस्त्र ले रहा है, मेरे पास भी होने चाहिए, मैं भी विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति हूं, उसके साथ उसका एक कंपटीशन था। और उनका सिस्टम कम्युनिस्ट सिस्टम था, उनका सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम था, वो पूंजीपति देश था, पूंजीवादी, और वो साम्यवादी, तो वो भी एक प्रकार से नफरत या द्वेष था। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस सारी परिस्थिति का विश्लेषण करें, कि अगर वो ईर्ष्या, द्वेष और ये घृणा और ये हिंसा की भावना, प्रतिशोध की भावना उससे जो पैदा होती है, ये चीजें अगर ना होती तो ये सारा अरबों रुपया जो खर्च हुआ ये क्यों होता? इतने सारे जो अच्छे शरीर वाले लोग हैं वो क्यों लगे होते उसमें, लड़ाई के काम में? उसकी बजाय वो खेती करते, कुछ चीज बनाते, संसार का भला होता, वो पैसा गरीबों के काम आता तो कुछ उसका उपकार होता, लेकिन वो सारा उनको बनाने में लग गया। तो आप सोचिए कि जब तक इनको हम नहीं निकालेंगे, और ये मनुष्य के मन में विज्ञान तो आ गया शास्त्र बनाने का, तो आज ये शास्त्र खत्म भी कर दें और अगर उनके मन में नॉलेज रहे, कल फिर उनका द्वेष हो जाए, घृणा पैदा हो जाए, फिर बना देंगे, वो तो खत्म नहीं होंगे। तो अभी भी अगर वो खत्म कर रहे हैं, तो जब उनको ये डर खत्म होता है कि भाई शायद हमला नहीं करेंगे, या आओ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आओ हम आपस में प्रेम करें, जब ये भाव पैदा होता है तभी खत्म करते हैं ना। तो इसका हम क्या नतीजे पर पहुंचे कि अगर संसार में हम चाहते हैं लड़ाई ना हो, तो लोगों में प्रेम हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, बदले की भावना ना हो, हिंसा की भावना ना हो, लोगों में सह अस्तित्व की भावना, मिलकर रहने की भावना हो, तो इसका नतीजा क्या निकला कि खरबों रुपया जो इतना खर्च होता है और इतने सारे आदमी लड़ाई में, जिसको हम सुरक्षा कहते हैं देश की, जो लग जाते हैं, उसकी बजाय अगर हम हर एक मनुष्य को ये शिक्षा दें कि भाई आपस में इंसान इंसान से क्यों लड़ते हो, पशु भी अपनी जाति वालों को नहीं मारते, तुम ऐसा काम निकृष्ट क्यों करते हो, इंसान को तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, बेस्ट ऑफ क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात कहा गया है, तो फिर इंसान होके आप दरिंदों का या पशु पाशविकता का काम क्यों करते हो? अगर ये उनकी समझ में आ जाए तो फिर ये संसार सुखमय बन जाएगा। ये एक बात मैंने आपको बताई। इसी तरीके से गरीबी क्यों है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सोचता है मेरे पास धन हो, मेरे पास वैभव हो, मेरे पास साधन हो। अब वो जो किसी की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो भी उस प्रोडक्शन में हिस्सेदार हैं, उस उत्पादन में उनका भी हाथ है, रात दिन बेचारे वो जाके मेहनत वो भी करते हैं। अब जो पूंजीपति लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, समझते हैं हमारे बच्चे की शादी होगी तो उस पर तो हमें 10 लाख रुपया खर्च करना है। तुम 10 लाख रुपया खर्च करने की सोचते हो, उस बेचारे के पास 100 रुपए भी नहीं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे के, फीस दे के, किताबें लेके उनको कोई स्कूल में दाखिल करा सके। कम से कम चलो तुम अपना पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, उनकी भी कुछ सोचो, थोड़ा हिस्सा उनका भी उसमें होना चाहिए। तो जब मनुष्य को ये भावना नहीं होगी, जिसको शोषण हम कहते हैं अपने लालच के कारण से, तो आप कितनी भी संस्थाएं बना लीजिए जो गरीबी को मिटाने वाली हो, गरीबी तो मिटेगी नहीं, क्योंकि उसका कारण यह है कि मनुष्य का दूसरों के प्रति सद्भावना ना होने से, प्रेम ना होने से, संतोष ना होने से, ये जो गुण है, फिर भी इन्हीं गुणों की बात है, प्रेम, सद्भावना, संतोष और साथ साथ जो भ्रातृत्व की भावना है कि ये भी हमारे भाई हैं, इनका भला हो, सहानुभूति, ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक वो गरीबी कैसे मिटेगी। तो बहनों और भाइयों, मैं सब समस्याओं का इस समय विश्लेषण करने के लिए नहीं ये चर्चा कर रहा, लेकिन संक्षेप में आपको ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं जो कार्य आज कर रही हैं समस्याओं को मिटाने का, उन समस्याओं के अगर हम कारण में जाएं, मैंने जैसे दो मुख्य समस्याएं आपके आगे ले ली, ऐसे ही आबादी बढ़ती जा रही है, चलो एक समस्या हम और ले लेते हैं। मकान बनाते हैं, काफी सारे मकान आप दिल्ली में जाएं, जो लोग वहां 1947 में आए और जो आज आप जाके देखें, दिल्ली इतनी एक्सपैंड हो गई है, हर एक शहर इतना एक्सपैंड हो गया कि अगर कोई पुराना आदमी, 100 साल पुराना आदमी कोई कब्र में से फिर उठ के खड़ा हो दिल्ली में आ जाए, वो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, वो कहेगा ये दिल्ली नहीं है भाई, मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, ये दिल्ली नहीं है। तो इतने व्हीकल्स हैं, सड़क पार करना मुश्किल है, लोग कितनी कितनी देर खड़े रहते हैं, एक के बाद दूसरी व्हीकल, तीसरी व्हीकल, चौथी व्हीकल, सरकार ने पुलें बनाई हैं, ब्रिजेस, ओवरहेड ब्रिजेस बनाई हैं, कोई अंत नहीं, बसें भरी हुई हैं, सैकड़ों बसें की हैं, तो भी लोग, ऐसा लगता है कि किसी और फैक्ट्री में तो लॉकआउट भी हो गया होगा, स्ट्राइक भी हो गई होगी, लेकिन जो मनुष्य की जन्म की कारखाना है वो चल ही रहा है निरंतर, ऐसा लगता है कि पता नहीं किस फैक्ट्री में मनुष्य बन रहे हैं, इतनी मोटरें नहीं आई, इतने मोटरसाइकिल नहीं है जितने मनुष्य आते जा रहे हैं। जिस इलाके में चले जाओ आपको ऐसा भीड़ भड़क्का लगेगा कि पता नहीं कहां से इंसान बनते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है संसार में इस समय इस फैक्ट्री का हो रहा है, मैं आपको सही बात बताऊं, इट इज वर्किंग डे एंड नाइट, आई टेल यू। कल की खबर थी, आपको आश्चर्य होगा, कल की खबर न्यूज़पेपर में थी कि इंग्लैंड में आउट ऑफ एवरी 4 वन इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, 4 बच्चों में से एक अवैध बच्चा पैदा होता है, आप बताइए शादी से बाहर एक बच्चा पैदा होता है 4 में से, 25% आप हिसाब लगाइए, ये मनुष्य की मनोवृत्ति हो चुकी है। तो आप विचार करें कि जब देश की आबादी इतनी बढ़ती जाएगी, फटाफट पैदा होते जाएंगे इंसान, और इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो और करेंगे, वो और करेंगे, वो और करेंगे, इस पर अगर कोई प्रतिबंध नहीं तो नतीजा उसका क्या होगा, आप इतने स्कूल खोल नहीं सकते, इतने अस्पताल बना नहीं सकते, इतने घर दे नहीं सकते, इतनी एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते, और वातावरण भी प्रदूषित होगा, और अगर आपने हर एक ने अपनी कार लेनी शुरू कर दी, आखिर में वो कार वाला कहेगा भाई इस कार को छोड़ के पैदल ही चलना ठीक है, 1 घंटे से ये ट्रैफिक जाम में कार खड़ी हुई है, अब तक तो मैं पैदल ही पहुंच जाता, ये कार नहीं, कार का नाम बेकार होना शुरू हो जाएगा, तो उस कार को लोग कार नहीं कहेंगे, कहेंगे बेकार है। अब ये तो ये सोचने की बात है कि अब ये समस्या कैसे समाप्त होगी, मनुष्य की ये जो काम वासना है, भोग वासना है, जिसका कोई अंत नहीं, उसकी प्यास बढ़ती है। आपने महाभारत में कथा पढ़ी होगी कि किस प्रकार से उसने 100 साल तक जिया, भोग भोगा, और फिर बेटे को कहता है कि मुझे अपनी जवानी दे दे, मेरे से बुढ़ापा ले ले, राज तू ले ले, ऐसी ऐसी कहानियां मिलती हैं। और वो भोग भोगने के बाद उसने क्या समझा कि ये भोगों का कोई अंत नहीं, ये ऐसे अग्नि के समान है जिस पर घी डालो तो भड़केगा, कम नहीं होगा। कभी भी हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इन भोग भोगने से तृप्त हुआ हो। कई लोग हैं खूब अचार मुरब्बे खाते हैं, बहुत टेस्ट लगता है उनको, जिस दिन उनको अचार ना मिले आम का, नींबू का, या किसी और चीज का, मिर्च मसाले का, तो कहते हैं आज खाना में मजा नहीं आया, आज पता नहीं खाना खाया हजम भी होगा कि नहीं। ऐसे लोगों को हमने देखा कि जब मर रहे हैं कहते हैं अचार तो थोड़ा सा खिला दो, बुजुर्गों को ये कहते हैं अरे भाई तू मर रहा है, डॉक्टर कहता है इसको खाना भी मत खिलाओ, सिर्फ चाय पिलाओ, और तू कह रहा है कि अचार खिला दो, कहता है थोड़ा सा तो खिला दो। मैंने खुद सुना है, आई टेल यू ऑनेस्टली, उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, आम के अचार में लगा हुआ है, बताइए। ईश्वर की बात छोड़ दो, घर की बात छोड़ दो, कहता है थोड़ा सा आम का अचार तो खिला दो, आई वाज सरप्राइज कि ये आदमी डेथ बेड पर है, मरने जैसा है, और फिर कहता है कि मुझे आम का अचार तो खिला दो है? तो ये आदमी की तृष्णा नहीं समाप्त होती अगर हम ये सोचें कि भोग भोगने से हम तृप्त हो जाएंगे, ऐसा कभी हमने कोई व्यक्ति देखा नहीं। तो अगर हम ये अपने जीवन में संयम नियम अपनाएं तब ये समाज सुखी होगा। तो ये जो जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो काम से, चाहे क्रोध से, चाहे लोभ से, चाहे मोह से, चाहे अहंकार से, चाहे आलस से, आलसी लोग भी दुनिया में बहुत वो हैं, जो भाग्यवादिता के करके हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं। वो एक मिसाल हमारे बुजुर्ग हमेशा दिया करते थे, फारसी में एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ था, एक जो बेर की वो होती है ना क्यारी, उसके नीचे बेर गिर के उसकी छाती पर पड़ा, और एक ऊंट पर आदमी जा रहा था, उसको कहता है, अरे ऊंट वाले, ये अरे ऊंट वाले, वो बेचारे ने समझा ये लेटा पड़ा है, कोई तकलीफ में है, चलो ऊंट को पहले, ऊंट से आदमी जंप तो लगा नहीं सकता, अपनी भी हड्डी पसली तोड़ेगा, पहले ऊंट को खुद बिठाया जाता है, वो किस करवट बैठता है उसको देख के उधर से उतरा जाता है। तो बेचारे ने ऊंट को लगाम लगाई, उसको बिठाया, बिठा के उतरा, उधर के आया, कहता है बोलो क्या सेवा है, कहता है ये बेर तो मेरे मुंह में डाल दो। उसने कहा भाई तेरे जैसे भी जो है ना, वो एक बनी है ना बुक जिसमें आता है ग्रेटेस्ट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट स्पीड के, वो आते हैं ना, क्या कौन सी बुक उसका नाम है जिसमें इस तरह की बातें आती है। तो मैं समझता हूँ ऐसा आलसी मनुष्य तो कोई नहीं संसार में होता होगा, लेकिन हर एक मनुष्य में किसी ना किसी प्रकार का आलस जरूर होता है। हम आपको बताएं अपने जीवन में अगर हम टटोलें तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हर एक व्यक्ति जो है वो इस तरह से सुस्त महादेव सुस्त महादेवी बन जाता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो छह विकार हैं जो योगी जीवन के लिए कहा गया है कि इनसे हमने हटना है, ये जो गीत बज रहा था शुरू शुरू में कि जो व्यक्ति निर्विकार है पवित्र जिसका जीवन है वो व्यक्ति महान है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से आप पूछ के देखें, कभी आप खड़े हो जाएं रास्ते पर, कोई आदमी जाए उसको कहो एक मिनट बात तो सुने, उस तरह की बात नहीं जो उसने बेर वाले ने बुलाया था, वैसे आप उसको एक मिनट बुलाएं, उसको कहें। अगर आप सर्वे करके देखें, विदेशों में इस प्रकार के सर्वे बहुत होते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, मेरे ख्याल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर बन गया वो भी संतुष्ट नहीं, जो प्रेसिडेंट बन गया वो भी संतुष्ट नहीं, जो महामंडलेश्वर बन गया वो भी संतुष्ट नहीं, हर एक के जीवन में कोई ना कोई इच्छा उसको कचोट रही है, वो अगर पूरी नहीं होती तो सपने में भी उसी के ही दर्शन करता है। ये हमने देखा है कि हर एक मनुष्य के जीवन में ये हालत है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इन संयमों नियमों को अपनाता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, एक वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आत्मा उसको सच्ची गवाह दे कि तू ठीक आदमी, उसको संतोष होगा कि आज अगर मेरा शरीर छूट जाए मैं इस संसार से चला जाऊं। जबकि मालूम है किसी को कि भाई कहते हैं डेथ कीप्स नो कैलेंडर, कैलेंडर में आप बता सकते हैं जन्माष्टमी कब है, रक्षाबंधन कब है, दिवाली कब है, मेरी मृत्यु कब है, उसमें कोई लाल इंक में छपा हुआ है किसी का कुछ पता, कुछ मालूम नहीं। इसलिए कहते हैं आया परवाना और हुआ रवाना, किसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम बिजी आई कांट कम आई विल कम आफ्टर 10 डेज, आया और आदमी गया, ये दुनिया का हिसाब है। जब ऐसी बात है तो हम जब अपने मन में झांक के देखें कि हमारा जीवन जो है संसार को भी सुख बनाने में और स्वयं को भी सुख बनाने में, सुखमय बनाने में, क्योंकि संसार भी सुखमय तभी होगा, समस्याओं से रहे तभी होगा, दुखों और अशांति से मुक्त तभी होगा जब व्यक्ति होगा, क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है।